Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And we wish all our listeners a very happy new year. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा, आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं को नव वर्ष की मुबारक हो और हम उन सबका स्वागत मार्केट मंत्र के इस पहले अंक में भी करना चाहेंगे 2026 के. हम ताजा आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें रोज की तरह आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे और अब सबसे पहले हेडलाइंस आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डैंग.
Thank you, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Benchmark domestic indices end New Year's first trading session on a flat note. Sensex dips 32 points, Nifty adds 17 points. GST collections rise over 6% to nearly 1.75 lakh crore rupees in December. And Pension Fund Regulatory and Development Authority Board allows scheduled commercial banks to independently set up pension funds for managing NPS.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक नए वर्ष के पहले कारोबारी सत्र में बिना किसी खास बदलाव के हुए बंद. सेंसेक्स 32 अंक गिरा, निफ्टी में 17 अंकों की बढ़त आई. जीएसटी संग्रह दिसंबर 2025 में 6% से अधिक बढ़कर लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ. और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित करने की स्वीकृति दी.
एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, friends, before we move any further, here's an announcement for our listeners, and that is that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right?
और अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए वर्ष के पहले कारोबारी सत्र में बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए. सूचकांक तेजी पर खुले थे लेकिन ये तेजी कायम नहीं रह पाई और दिन भर सीमित दायरे में कारोबार हुआ. सेंसेक्स 32 अंक कम होकर 85,189 पर बंद हुआ. निफ्टी 17 अंक बढ़कर 26,147 पर दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी बंबई शेयर बाजार में रुख मिला जुला ही था. मिड कैप सूचकांक लगभग 0.3% की बढ़त में रहा, हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज हुई.
All right, first day of 2026 and we take a look at the Sensex. Well, the benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended New Year's first trading session on a flat note. The indices opened in positive territory but could not sustain the momentum and traded in a range throughout the day. The Sensex dropped 32 points to close at 85,189, while Nifty added 17 points to settle at 26,147. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also displayed mixed trend. The mid-cap index gained almost 0.3% and the small-cap index dipped marginally.
और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 कंपनियां बढ़त में रहीं. सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियों में एनटीपीसी का शेयर लगभग 2.1% के उछाल में रहा, एटर्नल 2% से अधिक बढ़ गया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 1.4% वृद्धि दर्ज हुई। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में आईटीसी का शेयर 9.7% लुढ़क गया, बजाज फाइनेंस लगभग 1.5% और एशियन पेंट्स 0.6% से अधिक गिरकर बंद हुए।
Across sectoral indices at the BSE, 18 out of 22 sectors edged higher. In the gainers, telecommunication climbed 1.7%, utilities gained 1.5%, and power rose over 1.1%. Among the top laggards, FMCG dropped almost 3%, healthcare dipped over 0.1%, and oil and gas, as well as consumer durables, lost nearly 0.1%. While the overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,211 advanced, 1,952 companies declined and 172 remained unchanged.
और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ और 89.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। ओवरऑल बाजार का जो रुख रहा है उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, कल काफी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ वर्ष 2025 और ओवरऑल हम देखें तो 9% से अधिक का उछाल आया है बाजार में। कैसे देखते हैं आप भारत के प्रदर्शन को, अगर हम पूरे जो ग्लोबल मार्केट्स का लैंडस्केप है उससे उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो?
देखिए, जो आज जो स्टॉक मार्केट में जो हुआ है, मैं समझता हूं कि उसका ये जो 2-3 जो डिसीशंस लिए गए हैं उसका जो इम्पैक्ट आज स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिला। एक तो है कि जो टोबैको के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी का जो लगाने का प्रपोजल फरवरी 1 से होगा, उसका इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर, टोबैको सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर सारे में थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है। दूसरा है कि वोडाफोन कि जो डिसीजन लिया गया है उससे भी शुरुआती दौर में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में थोड़ी बहुत बिकवाली हुई। उसके बाद जब असेसमेंट हुआ कि इससे टेलीकॉम वोडाफोन जैसे कंपनियों को एक्चुअली इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा, उसमें रिकवरी भी हुई है। तो मिक्स ट्रेंड रहा है,
ब्रेथ भी पॉजिटिव है,
ब्रेथ भी पॉजिटिव है। और ज्यादा अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में तो गेन भी हुआ है मार्जिनल, तो मैं इसी तरह से मार्केट को देखता हूं।
एंड मिस्टर भट्टाचार्य, द सेंसेक्स ड्रॉप्ड 32 points but Nifty adds 17 points. Is there some kind of a dichotomy or a paradox there?
No, I don't think there is any paradox there. What is happening is that Nifty is a much wide-ranging composition of stocks in it.
Mm-hmm.
And whereas Sensex has got only 30 stocks, mm-hmm. and those 30 stocks are by and large more focused on sectors that have seen some sort of a decline, which is why you are seeing a marginal change in the character of Sensex and Nifty. Otherwise, the broad trend in the market was, I would say, positive.
Mm-hmm.
But at the same time, they are waiting for receiving the kind of signals, and that should arrive in the next 4 weeks or so. First, you will see the budget, and then there will be the lot of the GDP numbers will come by 7th of January.
Mm-hmm.
So the stock market is actually waiting for fresh triggers and fresh signals.
So, Mr. Bhattacharya, overall, jo aapse janna chah rahe the, briefly, ki 10th consecutive ye saal hai jab positive returns aayi hain भारतीय बाजार में और ऐसे समय पे जब काफी सारी चुनौतियां थी वर्ष 2025 में, सो कैसे आप देखते हैं इस परफॉर्मेंस को और 2026 के लिए ओवरऑल आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
देखिए, 2025 का जो परफॉर्मेंस रहा है, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम के बावजूद जो भारतीय अर्थनीति की जो वृद्धि दर जो है वो पॉजिटिव रही है, ट्रेड परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूं कि जो टैरिफ की जो इम्पैक्ट को ओवरकम करके थोड़ी पॉजिटिव में गई है। ऑल्सो जो 2025 में हमने देखा कि सरकार की ओर से काफी जो सुधारों की जो एक लड़ी आई है वो बरकरार है और जो जो इंडिकेशन जो सिग्नल जो आ रहे हैं कि वो 2026 में भी बरकरार रहेगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूंगा कि लेबर कोड कहें या आप जीएसटी के रैशनलाइजेशन कहें या आपकी जो जो रेवेन्यू या फिस्कल कंसोलिडेशन का जो ट्रेजेक्टरी जो है उसको देखें, तो स्टॉक मार्केट वही उसी दिशा में बढ़ रहा है। पर ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो वॉलेटाइल है और उसकी जो जो प्रतिफलन तो हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत देखेंगे।
All right. Well, it's just the beginning of 2026 and we just let go of 2025. So let's have a look at the Indian stock markets, a profile, an overview. The Indian stock markets registered annual gains last year. In 2025, indices hit their all-time high levels on the 1st of December when BSE Sensex touched 86,159 and NSE Nifty 50 registered 26,326 level during intraday trade. Conversely, the lowest levels were registered on 7th of April with Sensex declining to 71,425 and Nifty touching 21,744 level during intraday trade. Let us take a recap as to how indices at the Bombay Stock Exchange performed last year.
Among the sectoral indices at the BSE, public sector banks were the clear winners last year. Following its inclusion as a separate index in January, PSU Bank Index jumped close to 28% in 2025. Metals were close behind, with the index gaining over 27%. The auto index also raced ahead, rising about 21%, led by strong festive demand and next-generation GST reforms. Banking and financial services also delivered healthy double-digit returns. Reserve Bank of India, in its report on trend and progress of banking in India, had highlighted the continued resilience of the banking sector, backed by strong balance sheet growth, improved asset quality, and robust profitability. On the flip side, Realty was the biggest loser, slipping more than 17%. The IT pack too ended the year in the negative zone, while consumer durables also struggled. Overall, the sectoral scorecard showed a mixed bag. Ayushi Singh for Market Mantra.
Mr. Bhattacharya, when we talk about the public sector banks, so the government in the last 14 years has had lots of reforms. NPAs are now reduced, and there's also the government kind of gave money for recapitalization of banks. Bank mergers took place. Do you think all that has made this public sector bank a clear winner last year?
Well, I think the entire banking sector has done very well post the twin balance sheet problem that we saw in the mid the first half of the decade. Mm-hmm. Till 2014-15, the banking sector was in deep trouble. But since then, a variety of steps have been taken. Not only have the government recapitalized banks, particularly the public sector bank that you referred to, mm-hmm. but also there were new pieces of law like the Insolvency and Bankruptcy Code,
yes.
That helped banks deleverage themselves. And what has also happened in the last few years is that the banks are no longer the only source of corporate finance. The stock markets and the corporate debt market and the have come in a big way. As a matter of fact, the reliance of the corporate sector on banks has actually come down by a couple of percentage points this year, particularly. Mm-hmm. So what you are seeing is that the banks are free to chase the retail sector for growth. And at the same time, they are conscious of maintaining the quality of their asset in good shape. Mm-hmm. So I think the banking sector is clearly good news story as far as the Indian economy is concerned.
Such a contrast to when the government had come into 2014.
Absolutely.
What a contrast, tough
absolutely.
Contrast.
Yeah.
Yes, sir. Mm-hmm. Yes.
दो और सेक्टर्स जो मेंशनड हैं, जो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं पिछले साल में, वो है मेटल्स और ऑटो. तो ये आप कैसे देखते हैं, इनको भी बैकबोन माना जाता है खासकर ऑटो को, और जिस तरह के सरकार ने पीएलआई द्वारा जो सपोर्ट दिया है खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसमें जिस तरह का हमने उछाल देखा है, इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा है, पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ऑटो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ जो हुआ है वो इन्वेस्टमेंट और डिमांड दोनों की प्रक्रिया इसमें दिखती है हमें। एक तरफ तो जो इंडियन ऑटो सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट भी काफी किया है और दूसरी ओर जो डिमांड जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो भी काफी सस्टेन रही है, और मुझे लगता है कि वो डिमांड अभी भी सस्टेन होगी, क्योंकि पिछले सितंबर में जैसा आपको मालूम होगा कि जीएसटी की जो दरें जो हैं वो घटाई गई हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत बड़ा एक फायदा मिला है उससे। तो मैं समझता हूं कि जो पीएलआई का जो भूमिका है वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीएलआई से जो करीबन 35,000 करोड़ की जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो आई है वो जरूर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो भूमिका है उसको और भी बड़ा करेगी।
इनफैक्ट आपने मेंशन किया कि जीएसटी में कटौती हुई है, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी संग्रह है वो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर के लेटेस्ट फिगर्स हैं हमारे पास, कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह दिसंबर 2025 में वर्ष 2024 के इसी महीने की तुलना में 6.1% बढ़कर लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2024 में कुल जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक था। पिछले दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34.289 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 41,368 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत आईजीएसटी संग्रह 98,894 करोड़ रुपए रहा। सो ब्रीफली, आपको लगता है कि जो डिमांड में बूस्ट आया है उससे जीएसटी कलेक्शन
में जो डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि 6% की ग्रोथ इकोनॉमी की जो रेजिलियंस को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर रही है, ये ग्रोथ का और भी ज्यादा होना हमें कोशिश करनी चाहिए, पर डिक्लाइन नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी एक एश्योरेंस।
Right. The Indian economy continues to grow at a strong pace, supported by robust domestic demand, moderate inflation, and prudent macroeconomic policies despite global headwinds. This was stated by the Reserve Bank of India in its latest financial stability report. These factors have helped the economy navigate global headwinds effectively. Here's more from our correspondent.
The Financial Stability Report noted that the domestic financial system remains stable and resilient, aided by strong balance sheet, easy financial conditions, and low volatility in financial markets. However, it cautioned that near-term risks persist due to external uncertainties, particularly those related to geopolitics and global trade tensions. The report emphasized that macro stress test results reaffirm the resilience of scheduled commercial banks. Even under hypothetical adverse scenarios, banks expected to withstand potential losses while maintaining capital buffers well above the regulatory minimum. Stress tests also confirm the robustness of mutual funds and clearing corporations. Additionally, the RBI stated that non-banking financial companies continue to remain strong, supported by adequate capital buffers, healthy earnings, and improving asset quality. The insurance sector also demonstrated balance sheet's resilience, with the consolidated solvency ratio remaining above the prescribed minimum threshold. Overall, the report underscores the stability of India's financial system while urging continued vigilance against evolving global risks. For Market Mantra, Devapriya Bhattacharji from Mumbai.
भट्टाचार्य, अगर हम देखें तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है जो स्ट्रेस टेस्ट्स के रिजल्ट आए हैं, नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अक्रॉस जो फाइनेंशियल कैटेगरीज है, इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते
हैं? देखिए, जो हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जैसे आपने कहा कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में सीमित नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर है, पेंशन सेक्टर है, और ये दोनों सेक्टर में जो हमने देखा है कि पर्टिकुलरली जो पेंशन सेक्टर में उसका जो ग्रोथ जो हुआ है वो डिफरेंट सेक्टर्स में हुआ है, और उनकी जो एक्सपोजर कैपिटल मार्केट में रेगुलेटेड तरीके से किया गया है, उससे मैं समझता हूं कि जो पेंशन सेक्टर की जो रेजिलियंस जो है उसमें काफी वृद्धि हुई है। और इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे आपको मालूम होगा कि एक पॉलिसी रिस्पांस भी आई है कि 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है उससे मैं भी समझता हूँ कि काफी एक और भी एक एक्टिविटी उस इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ेगी। हमारी जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो पेनिट्रेशन जो है इस वक्त काफी कम है, हालांकि और सारे जो विकसित देश जो हैं उसमें इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन करीबन 3 से 4% की होती है, पर हमारी अभी भी काफी 2% के नीचे है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज जो है ये दर्शाते हैं कि हमें काफी रास्ता तय किया है, पर और भी काफी रास्ते हमें लंबी रास्ते तय करनी पड़ेगी।
Right. Well, the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA, has given its approval to Scheduled Commercial Banks, SCBs, to independently set up pension funds for managing the National Pension Scheme, NPS. Now, SCBs will also be eligible to become sponsors of pension funds. According to PFRDA, the move will enable greater participation by banks, enhance competition in pension fund management, and help safeguard the interests of NPS subscribers. So, Mr. Bhattacharya, how do you interpret this? Is the idea to strengthen pension funds? Is the idea to safeguard the subscribers' interests?
Yeah, I mean, it's most importantly, it gives you more options and choices to ordinary individuals who will plan their social security funds. Mm-hmm. Right now, what is happening is that you have the pension fund, those products are very limited, and with the insurance pension fund regulatory developer authority allowing scheduled commercial banks to come up with their new pension plans, the pension products, the choice for the individuals, employees of different companies or even in the government sector under the national pension system, you can go in for a variety of combinations. Right now, those choices are limited. Mm-hmm. The choices will now get wider. And therefore, if the choices are more, then the risks that are associated with these pension products will also be mitigated to a great extent.
And also, jo RBI ki report hai, usne bataya hai ki ye baki institutions bhi strong hai to take on this added responsibility.
All right, Centre has notified draft rules for the 4 new labour codes. These labour codes are the Code on Wages 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. The rules define workers, wages, types of employment, gratuity, bonus and social security of workers, including gig workers. These draft rules are open for public consultation and stakeholders have been invited to submit objections and suggestions. The Labour Ministry had announced the implementation of these 4 new labour codes on the 21st of November last year to simplify and streamline the existing decades-old labour laws in the country. Mr. Bhattacharya, we've had, this is almost like rationalizing, we call it, 29 existing labour laws. Many of our laws were made pre-independence, some post-independence, but now we have kind of streamlined all for the benefit of the labour and the industry, both will benefit.
Absolutely. It's quite a dramatic move because, as you would know, by 2020, these 4 labor codes were passed by Parliament, and subsuming 29 different central labor laws, but it has taken about almost 5 years to come out with these labor codes. Now the rules have been notified and they are awaiting feedback from people, but there are 3 things that are very significant in these labor rules. Mm-hmm. Number one is that the kind of minimum wage criteria that are being suggested in these rules are very significant. The states will have the freedom and the flexibility of deciding on those minimum wages as long as they don't go below what has been prescribed by the Centre's Labour Code. That's number one. Uh-huh. Number two is that your entire pay package cannot have the pay component less than 50%. In other words, your social security benefits will be linked to that 50% benefit, which is really the minimum thing. And number three, the gig economy workers, whose numbers are rising by the day. As of now, we have got around 1 crore or 10 million people who work are employed in the gig economy, and their number is expected to go up to 30 million by 2031, according to the Niti Aayog estimates. Now, these people are now being given a kind of the social security benefit like EPF or gratuity, mm-hmm. anybody who is in a contractual firm, if it is more than 1 year, then that fixed contract employee will be entitled not only to the social security benefit like EPF, but also to gratuity. So I think these will bring about a dramatic change in the labor market. The costs of the employers will certainly go up, but for the benefit of the large number of unorganized sector employees who right now get employed as contract workers or even the gig workers who deliver us food and services, their lot is expected to be better.
Aur mahila sashaktikaran ke liye bhi bahut
saare, for example, there is a rule, you are absolutely right, for example, that this new labor codes have allowed and specified the number of hours that women can be employed even for the night shift,
yes.
and there are specifications on the number of hours an employee can be employed. For example, there is a limit of 48 hours per week, which means if it is 6 working days, then out of which it cannot be more than 8 hours. In other words, the labor code is also specifying what kind of the rest hours should be there. So everything is given there. If the laws are really implemented in the spirit, I think it will be a major change.
लेते अगली खबर जो बहुत ही उत्साहजनक है. एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने दिसंबर में 29% की वृद्धि के साथ 21,63 करोड़ लेन देन किए. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार ये लेन देन वार्षिक 20% बढ़कर लगभग 28,00,000 करोड़ रुपए हो गया. नवंबर 2025 में यह 87,721 करोड़ रुपए था. औसत दैनिक लेन देन की संख्या पिछले महीने के 68,20,00,000 से बढ़कर 69,80,00,000 हो गई. सो ये जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी की मजबूती है वो भी ट्रांसपेरेंसी लाती है.
जरूर, क्योंकि अगर डिजिटल इकोनॉमी को आप देखेंगे उससे ना ही उपभोक्ता का संरक्षण होता है, पर उपभोक्ताओं की जो सहूलियत होती है वो बहुत बड़ी चीज है. जैसे अगर आप डिजिटल फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे तो पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन लाया है. उससे ना ही कि कॉस्ट घटा है, पर ये भी हुआ है कि किस तरह से आप सारे पेमेंट ट्रांजैक्शंस को इजी एंड स्मूथली आप कर सकते हैं.
एंड इट्स क्रिएटिंग रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड द यूपीआई पेमेंट्स. ऑलराइट, वेल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स बाय 111 रुपीज अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन सिटीज. As per the Indian Oil Corporation Limited, retail price of commercial LPG gas cylinders in Delhi is now 1,691.50 rupees. However, there has been no change in the price of domestic LPG cylinders.
और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें. प्रमुख एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार आज नववर्ष के उपलक्ष्य में बंद थे.
Yes. US ki yes, look at the US markets. Well, major US indices closed in negative territory yesterday amid light trading on the last day of 2025, but wrapped up the year with double-digit annual gains. The Nasdaq Composite Index dropped nearly 0.8% to close at 23,242. The S&P 500 lost over 0.7% to settle at 6,846. And Dow Jones Industrial Average slipped more than 0.6% to end at 48,063. And meanwhile, the Nasdaq Composite surged more than 20.3% this year. And meanwhile, U.S. markets remain closed today for New Year holiday. And here's a check. The government has debunked a social media account claim that the government has imposed an 85% tax on bank transactions exceeding 10 lakh rupees.
Udhar jaldi se bata dein ki multi commodity exchange mein din ke karobar mein taza samachar milne tak February anuband wala sona lagbhag 1% kam hokar 135690 rupaye prati 10 gram par tha. March anuband wali chandi bhi mamooli giravat se 235800 rupaye prati kilo par thi. Samay hame ijazat nahi de raha ki hum charcha ko आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य.
नमस्कार.
2026 के पहले अंक में शामिल होने के लिए
नमस्कार.
एब्सोल्युटली. वेल फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड न्यू ईयर्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑन फ्लैट नोट. सेंसेक्स डिप्स 32 पॉइंट्स. निफ्टी एड्स 17 पॉइंट्स. जीएसटी कलेक्शंस राइज ओवर 6% टू नियरली 1.75 लाख करोड़ रुपीज in December. And Pension Fund Regulatory and Development Authority Board allows asked scheduled commercial banks to independently set up pension funds for managing NPS. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sonu Sood, along with our expert, Mr. A.K. Bhattacharya, signing off for now. Namaskar.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।